नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास मानकों पर गहन पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि G20 ने वैश्विक वित्त और विकास को आकार दिया है, लेकिन वर्तमान मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा मिला है, जिसका असर विशेष रूप से अफ्रीका में दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों को आगे बढ़ाया गया है। श्री मोदी ने कुशल प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए अपने संबोधन में 4 प्रमुख प्रस्ताव भी रखे। श्री मोदी ने G20 के अंतर्गत एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस के साथ भी चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आज अमेरिका की आपत्ति के बावजूद सर्वसम्मति से संयुक्त घोषणा को अपनाया। ये घोषणा जलवायु संकट सहित वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामुला ने इस घोषणा को अफ्रीकी महाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण और बहुपक्षवाद की मजबूत पुष्टि बताया। तेलंगाना में प्रतिबंधित गुट CPI माओवादी के 37 सदस्यों ने आज हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया। इनमें राज्य कमेटी के 3 वरिष्ठ सदस्य और 25 महिलाएं शामिल हैं। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी के सामने इन माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले राज्य कमेटी के सदस्यों को सहायता राशि के तौर पर 20-20 लाख रूपये दिए गए हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि उनके बीच 1,41,05,000 रुपए की कुल सहायता राशि वितरित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन ढांचे को बेहतर बनाने तथा संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर से तमिलनाडु और काशी के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों को मनाने के लिए काशी तमिल संगमम के 4th संस्करण का आयोजन कर रहा है। ये पहल दोनों क्षेत्रों के बीच सभ्यता, संस्कृति, भाषा और लोगों के बीच संबंधों का सम्मान करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती है। ये कार्यक्रम IIT मद्रास और BHU वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इसे संस्कृति, सूचना और प्रसारण, पर्यटन तथा वस्त्र मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंभीर वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना में संशोधन किया है। आयोग ने ग्रैप 4 के उपायों को अब ग्रैप 3 के अंतर्गत लागू करने का फैसला किया है। इन उपायों में सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति का प्रावधान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। श्रृंखला में भारत 0-1 से पीछे है। टोक्यो में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये माहित का 4th पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।